रक्षित ने दीवा को मिलने के लिए बुलाया था। दीवा ने इस बात के बारे में आर्यांश के सामने जिक्र भी नहीं किया था। यहां तक कि आर्यांश के ऑफिस जाने के बाद वो शॉपिंग का बहाना बनाकर इंपीरियल हाई स्कूल पहुंची। वेकेशन होने के कारण वहां केयरटेकर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। दीवा वहां पहुंची तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो मुस्कुराते हुए कैंपस की तरफ देख रही थी। उसके कदम खुद ब खुद अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ गए थे। हॉस्टल के उसके रूम की खिड़की की तरफ ही फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ था। दीवा को याद आया कि उसने पहली बार रक्षित को वहीं पर फुटबॉल खेलते हुए देखा था। उसके बाद तो जब भी रक्षित फुटबॉल खेलता तो वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हो जाती थी। पुरानी यादें याद आने पर जहां पहले दीवा के चेहरे पर हल्की जेन्युइन स्माइल थी, लेकिन अगले ही पल वही मुस्कुराहट अब कड़वाहट में बदल चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो वो इत्तेफाक नहीं था। मुझे लगा कि मैं उसे छुपकर देखती हूँ, जबकि सच तो ये था कि ये उसकी साजिश का हिस्सा था। वो जानबूझकर इस ग्राउंड में खेलने के लिए आता था ताकि मेरी नज़र उस पर पड़े। पहले जब वो रक्षित के बारे में सोचती थी तो उसके मासूम चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल उठती थी, लेकिन जब से उसे ये पता चला था कि रक्षित उसके पापा को बर्बाद करने के लिए उसके करीब आया था, तब से दीवा को जब भी रक्षित से जुड़ी कोई याद आती तो उसका मन कड़वाहट से भर उठता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रक्षित के दिए जख्म भरने लगे थे। दीवा खोई हुई चारों तरफ देख रही थी, तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वेकेशन चल रहे हैं, बच्चों के बिना सब कुछ वीरान हो जाता है। वो रक्षित था। दीवा तुरंत पीछे पलटी। उसने देखा रक्षित ने नॉर्मल सफ़ेद शर्ट और नीचे डेनिम की पैंट्स पहनी हुई थीं। वो पहले से काफ़ी अलग लग रहा था। हालांकि जेल से बाहर आते ही उसने अपनी शेव क्लीन कर ली थी, लेकिन उसका लुक काफ़ी सिंपल लग रहा था। दीवा ने मुस्कुराकर कंधे उचकाकर कहा, हाँ, यहाँ काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद थी वो आज भी वहीं पर है। रक्षित ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया था। कुछ पल रुक कर वो बोला, चलो वहाँ चलते हैं। इतना कहकर उसने तुरंत अपने हाथ पॉकेट में डाल लिए थे। पहले जब भी वे दोनों घूमते थे तो दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में होते थे, पर आज उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा था, इसीलिए रक्षित ने पहले ही अपने हाथ अंदर कर लिए थे। दीवा ने एक नज़र रक्षित की तरफ देखा। उसके अंदर जज्बातों का तूफान सा उमड़ रहा था। उसके दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि उसे अब रक्षित को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि रक्षित को भी अपने किए पर पछतावा था। उसने भी गोयंका फैमिली को माफ़ कर दिया था। वे दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे, तभी दीवा को धूप से बचाने के लिए रक्षित उसके उस तरफ चलने लगा जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। चलते हुए रक्षित ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, दीवा, मैंने पिछले दिनों बहुत सोचा है। और क्या सोचा तुमने? दीवा ने पूछा। थैंक यू सो मच, जो तुमने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया। मैं अपने बदले के चक्कर में अंधा हो गया था, लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं बदले में ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझसे प्यार करो या मुझे माफ़ कर दो। सच कहूँ तो नवीन अंकल मुझे बाहर नहीं भी निकालते तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, रक्षित ने शांत लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर दीवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रक्षित एक चालाक इंसान ज़रूर था, लेकिन हाँ, अब उसे सच्चे दिल से पछतावा हो रहा था। अगर उसका बचपन अच्छा बीता होता तो शायद वो ऐसी हरकत नहीं करता। जो भी बीत चुका है उसे भूलने में ही भलाई है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और एक अच्छी लड़की से शादी करो। जब तुम शादी करो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहूंगी, दीवा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। उसकी बदकिस्मती थी जो सब खराब हो गया, वरना वही रक्षित की दुल्हन बनती। ठीक है, जब भी मैं शादी करूंगा तुम्हें मेल कर दूंगा, रक्षित ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा, जबकि वो जानता था कि दीवा ने उसे सब तरफ से ब्लॉक कर रखा है। वो चाहकर भी उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। दोनों आपस में बातें करते हुए अनजाने में पियानो रूम में पहुंच चुके थे। वहां आते ही दीवा खोई हुई निगाहों से उस कमरे को देखने लगी। म्यूजिक उसका पहला प्यार था और उस रूम के ठीक पास में एक फूलों से भरा हुआ गार्डन था। बारिश के दिनों में वो कमरा फूलों की खुशबू से महक उठता था। दीवा उस कमरे को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो गई थी कि तभी रक्षित की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। दीवा, क्या अब तुम पियानो नहीं बजाती हो? रक्षित बोला। दीवा ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनजाना सा दर्द उभर आया था। दीवा ने तुरंत अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाकर खुद के आंसुओं को रोका और कहा, उस दिन बजाया था जब तुम क्लब में लेकर गए थे, पूरे 4 साल बाद, लेकिन अब नहीं बजाती हूँ। दीवा की आंखों में दर्द को रक्षित ने महसूस कर लिया था। उसने दीवा के सामने आकर धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि हमें अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तुम वहीं पर क्यों अटकी हुई हो? दीवा, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम म्यूजिक से कितना प्यार करती हो, फिर तुमने डॉक्टर बनना क्यों सिलेक्ट किया? ये काम कितना मुश्किल होता है, तुम ठीक से सो तक नहीं पाती हो। तुम चाहो तो वक्त निकालकर ऐसे बच्चों को म्यूजिक सिखा सकती हो जो म्यूजिक को उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम करती हो। मेरा यकीन करो, ये तुम्हें दिल से खुशी देगा। रक्षित दीवा को करीब से जानता था, इसीलिए वो उसकी तकलीफ को समझता था। उसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल पियानो सीखने में दिए थे और एक हादसे में सब कुछ बदल दिया था। लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं रक्षित, और मैं भी बदल गई हूँ। मैं एक पियानिस्ट नहीं हूँ, अब मैं एक डॉक्टर हूँ जो लोगों की जान बचाती है, जिस पर लोग इतना यकीन करते हैं कि अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, दीवा ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। दीवा ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा। पूरी दुनिया में शायद वो एकमात्र इंसान था जो उसकी आंखों में उतरे दर्द को उसके बिना कहे समझ सकता था। दीवा को बुरा लग रहा था कि रक्षित के बाद उसे इतना कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। दीवा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये देखने के बाद रक्षित ने कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम खुश रहो। प्लीज़ खुद को तकलीफ मत दो, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, दीवा ने जवाब दिया। कुछ देर के लिए वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ये आखिरी बार होगा जो वे दोनों बात कर रहे थे। रक्षित ने नवीन की सारी शर्तों को मान लिया था तो उसे मुंबई छोड़कर जाना ही था, और वो कभी दीवा के पास वापस नहीं लौट सकता था। थोड़ी देर की आई कॉन्टैक्ट के बाद दीवा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ की तो रक्षित ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं? अचानक दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। एक लड़का और एक लड़की भले ही दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो प्यार करने वाले कभी बिछड़ने के बाद दोस्त नहीं हो सकते। दीवा ने रक्षित की तरफ देखा और भौहें उठाकर कहा, चलो एक वादा करते हैं, अगर हम फ्यूचर में वापस कभी मिले तो एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन जाएंगे। दीवा ने जानबूझकर ऐसा कहा, वो जानती थी कि वो कभी अब वापस से रक्षित से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, रक्षित ने भी हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। दीवा ने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, अच्छा बताओ कहाँ जाने का इरादा है? ज्यादा सोचा नहीं है, किसी यूरोपियन कंट्री में जाने का सोच रहा हूँ, रक्षित ने जवाब दिया। फिर वहां अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना, दीवा बोली। ये गुड बाय उन दोनों के लिए ही आसान नहीं था।
रक्षित चाह रहा था, उसके जाने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो दीवा को समझ सकता था। उसकी जिंदगी में आर्यांश था, तो अचानक दीवा के दिमाग में आर्यांश का ख्याल आया। क्या वो उसे समझेगा? लेकिन वो तो इतना पजेसिव था कि दीवा उसके सामने ये तक नहीं बता पाई कि वो रक्षित से मिलने आ रही है। अगर वो उसे सच बताती तो न जाने वो उसे किस तरह से लेता। दीवा वहां खड़ी आर्यांश के बारे में सोच रही थी, तभी रक्षित की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। रक्षित ने उससे कहा, मुझे जाना होगा, अभी थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है, तुम कुछ कहना चाहो तो बोल सकती हो। अलविदा रक्षित, दीवा ने इतना ही कहा। उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। रक्षित भी नहीं चाहता था कि दीवा उसे देखकर कमज़ोर पड़े। उसने प्यार से दीवा के गाल को सहलाया और हमेशा उसे अपना ख्याल रखने को कहकर वहां से चला गया। दीवा उसे जाते हुए देख रही थी। जब उसे रक्षित दिखाई नहीं दिया तब वो वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था उसका पहला प्यार इस तरह अधूरा रह जाएगा। वो उसे धोखा नहीं देता तो शायद आज वे दोनों पति पत्नी होते। थोड़ी देर बाद रोने के बाद जब दीवा का दिल हल्का हो गया तो वो उठी और स्कूल में घूमकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगी। घूमते हुए दीवा पिछले गार्डन में चली गई थी। हालांकि उसने वादा किया था कि वो उस जगह पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस जगह से उसकी बहुत ज्यादा अच्छी यादें जुड़ी हुई थीं। ऊपर आसमान में सूरज काफी तेजी से चमक रहा था, लेकिन दीवा को गर्मी तक का एहसास नहीं था और वो खोई हुई उस बगीचे में चली गई। उसे इस बगीचे में एक लड़की दिखाई दी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो वायलिन बजा रही थी। हालांकि दीवा जानती थी कि वो उसका बस एक वहम है, क्योंकि जो इंसान दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता है। वो दीवा की सबसे अच्छी दोस्त थी और उससे जुड़ी यादें बहुत खूबसूरत थीं। बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। दीवा के कानों में उसकी बातें गूंजने लगी थीं। दीवा, आज हम साथ में खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे। दीवा, तुम्हें पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड बना है और वो बहुत हैंडसम है। दीवा, शायद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन तुम डरना मत। दीवा ने चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए थे और वो वहां पर बेहोश होकर गिर चुकी थी। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। दीवा भले ही रक्षित से मिलने की बात को कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अब वो जो बेहोश हो गई है तो आर्यांश से छुपाना आसान नहीं होगा। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।